ओम शांति। मधुबन की इस पावन भूमि पर शांति स्तंभ के पवित्र वातावरण में आदरणीय डॉक्टर प्रताप मिड्डा भाई जी का बहुत बहुत दिल से स्वागत है। स्वागत है सभी एकता। इस चंडीगढ़ की जो योग भट्टी चल रही है, सबको ये जानना बहुत जरूरी है कि आदरणीय भाई जी चंडीगढ़ से ही हैं, और ये हमारे लिए बहुत गौरव की बात है कि मधुबन के इस बेहद घर में ये समर्पित रूप से सेवाएं दे रहे हैं। आप 1961 में परिवार सहित ज्ञान में आए और उसके बाद चंडीगढ़ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आप मेडिकल ऑफिसर के रूप से कार्यरत रहे। उसके बाद बाबा के इस बेहद घर में बड़ों की प्रेरणाओं से आपने ग्लोबल हॉस्पिटल आके संभाला, और आपके नेतृत्व में 1991 से ग्लोबल हॉस्पिटल में अनेक सेवाएं विकसित हुई। क्योंकि भाई जी को ये बहुत थॉट रहता था कि सबको हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए, क्योंकि अगर लिविंग स्टैंडर्ड ठीक है तो हेल्थ ठीक हो सकती है। तो बहुत सारे सेशंस और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स ये समय समय पर आम जनता के लिए रखते हैं, और अलग अलग आसपास के जो गांव हैं उनको बहुत फैसिलिटीज देने के लिए और अवेयर करने के लिए ऐसे प्रोग्राम्स भी रखते हैं। जहां सिर्फ 40 का स्टाफ था, आपके गाइडेंस में आपके नेतृत्व में आज लगभग 500 का स्टाफ ग्लोबल हॉस्पिटल में है और अलग अलग डिपार्टमेंट सेटअप हुए हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है। अनेक रिसर्च प्रोजेक्ट्स भी आप देखते हैं, माना ग्लोबल हॉस्पिटल के एज ए डायरेक्टर आप सभी एक्टिविटीज को बहुत सुचारू रूप से लीड करते हैं और बहुत अच्छे तरह से सब संभालते हुए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन माउंट आबू ब्रांच के भी आप मेंबर हैं, राज योगा एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन के मेडिकल विंग के आप बहुत एक्टिव मेंबर हैं, और जब जब मेडिकल कॉन्फ्रेंस होती है तो आपका बहुत विशेष वक्तव्य उसमें रखा जाता है, पॉजिटिव लाइफस्टाइल, इफेक्ट ऑफ राजयोगा ऑन हेल्थ, ऐसे अनेक बहुत अच्छे टॉपिक्स पर आपका वक्तव्य रखा जाता है। आज हम सब ब्राह्मणों के बीच में एक शक्ति को विकसित करने का इनका टॉपिक है, हमारी निर्णय शक्ति कैसे बढ़े, कैसे हम उसे ठीक से यूज कर सकें। तो इस टॉपिक के साथ आदरणीय भाई जी हम सबके बीच में हैं, अभी हम उनसे सुनेंगे। आदरणीय प्रताप भाई जी।
ओम शांति। बाबा के इस बेहद घर में आने का जो सौभाग्य मिलता है उसका यूं कहें क्रेडिट किसको जाता है? चंडीगढ़ को। चंडीगढ़ ने छुट्टी दी तो तभी यहां आए। तो हम सभी ये जानते हैं कि बाबा का ये बड़ा घर है। जब घर में आने का निमंत्रण मिला तो ये भी बहुत बड़ा डिसीजन था। ईश्वरी परिवार को वहां भी परिवार था, अलौकिक परिवार था, और चंडीगढ़ में 61 से रह रहे थे। सेवाएं जब हम लोग चंडीगढ़ आए थे तो चंडीगढ़ सेवा केंद्र की पहली वर्षगांठ थी, हमारे आने के बाद मनाई थी। तो सेवा बचपन से, जैसे बाबा भी कहते हैं कि ब्राह्मणों के रग रग में सेवा तो समाई हुई है। जैसे आप थोड़ा भी ज्ञान सुनते हैं फिर शेयर करना चाहते हैं, सबको सुनाना चाहते हैं, तो कार्य तो आरंभ से शुरू हो जाता है। लेकिन जो हमने जीवन का डिसीजन लिया, हम सब ने डिसीजन लिया, एक निर्णय लिया कि हमने भगवान को अपना बनाया और ये निश्चय किया कि वो हमारे अविनाशी पिता है और हम अपना कल्प कल्प का बेहद का वर्षा पाने के लिए उनसे अपना संबंध जोड़ते हैं। लोग जो डिसीजंस लेते हैं, जो निर्णय लेते हैं, कोई भावनाओं के आधार पे लेता है, कोई समय के आधार पे होता है, कोई किसी मनुष्य आत्मा के कहने पे लेते हैं, आधार पे लेते हैं। जीवन में हर पहलू में हम फैसला तो लेते हैं, लेकिन उसके पीछे कारण बहुत अलग अलग होते हैं। तो हमारा निर्णय किसके आधार पे हुआ? हमने भगवान को पहचाना तो किस आधार पर पहचाना? जी, निश्चय के आधार पर। निश्चय से पहले भी हमें क्या मिला? प्यार मिला और ज्ञान मिला। तो हमारे निश्चय का आधार ज्ञान है। आज भी बाबा ने कहा कि बुद्धि को ज्ञान का भोजन मिलता रहे तो बुद्धि शक्तिशाली बनती है। कहा कि ब्रह्मा भी जो नंबर वन बना वो भी किस आधार से बना? श्रीमत के आधार से। हम सभी बाबा ने आज एक लाइन कही, शायद आपको याद होगा, कि हम सभी व्यक्त ब्राह्मण से अव्यक्त संपूर्ण ब्राह्मण बनते हैं। अब उसका आधार क्या है? ज्ञान है, निश्चय है, लेकिन सबसे पहले तो हम अपने आप को सरेंडर करते हैं, समर्पित करते हैं। हम ये कहते हैं, अभी बाबा ने भी कहा कि श्रीमत। बाकी लोग किस आधार पे अपने निर्णय लेते हैं? समय के आधार पे होता है कि वो लोग समय के आधार पे चलते हैं, या माँ बाप कहने से हम कोई वोकेशन चूज करते हैं, कोई व्यवसाय चूज करते हैं। लेकिन हमारा जो फैसला है वो श्रीमत के आधार पर है। हमने श्रीमत को समझा, ज्ञान को समझा, उसके आधार पे हमने निर्णय लिया। अब आप देखिए, दुनिया में भी निर्णय कब गलत होते हैं? कहते हैं हमारा इंटेलेक्ट क्लाउड हो गया था, बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। किस आधार पे होती है? किसी की बुद्धि क्रोध के आधार पे क्लाउड हो जाती है, नहीं डिसीजन ले जाते हैं। कोई भावनाओं में बह जाते हैं, जिसको हम यूं कहें वो स्नेह कहते हैं, मोह कहते हैं, उसके आधार पे हम बह जाते हैं। या फिर जैसे हम कहते हैं, अपवित्रता के कारण भी लोग अपना निर्णय राइट नहीं ले पाते। लेकिन बाबा ने हमें क्या सिखाया? हमारी फाउंडेशन जो है, जैसे आज भी बाबा ने कहा कि बुद्धि सोने का बर्तन कब बनती है? योग बल के द्वारा। और उसकी फाउंडेशन क्या है? पवित्रता। तो हमारे सभी निर्णय भी कैसे होते हैं? श्रीमत के आधार पर होते हैं, पवित्रता की जो फाउंडेशन है। क्योंकि आप देखें, दुनिया में भी कोई डिसीजन लेता है तो उसके कहते हैं ये अनबायस्ड डिसीजन लेना आजकल बहुत मुश्किल है, कोई ना कोई प्रभावित कर देता है उनके निर्णय को। जो जब हमारी बुद्धि स्थिर होती है, बुद्धि हमारी स्थिर भी कब होती है? जब उसमें क्लैनलीनेस होती है। आप देखें, जो चीज शुद्ध होगी, पवित्र होगी, पावन होगी, वो लंबे समय तक ठहर सकती है। जिस चीज में इम्प्योरिटीज होंगी वो जल्दी ही डिके कर जाती है, जल्दी खराब हो जाती है। तो जब हमारी बुद्धि में पवित्रता है, क्लैनलीनेस है, एक श्रीमत है, तो हमें निर्णय लेने में कुछ मुश्किल नहीं होती। जो भी हम निर्णय लेते हैं, जैसे बाबा कहते हैं कि आप बच्चों का हर कदम किस आधार पर होना चाहिए? बाबा अगर विश्व कल्याणकारी हैं, तो हम आत्माओं को भी विश्व कल्याण की सोचनी है। बाबा अगर रहम दिल है तो हम लोग भी रहम दिल होकर चलेंगे, कंपैशनेट होकर चलेंगे, तभी हम निर्णय ले पाएंगे। आजकल लोग कहते हैं कि लोग बहुत इनसेंसिटिव हो गए, संवेदनशील नहीं है, कुछ भी होता है उनको प्रभावित नहीं करता। अब जो वायलेंस हम देखते हैं, जो हेट्रेड हम देखते हैं, वो किस लिए? क्योंकि हम एक दूसरे के प्रति वो जो स्नेह है, जो संवेदनशीलता है, वो नहीं है। तो परमात्मा ने जो हमें ईश्वरी ज्ञान दिया, ज्ञान के साथ साथ जो अपना बनाया, आज हमें क्या याद आता है? बाबा की दी हुई पालना याद आती है। हम अव्यक्त बाप दादा को भी याद करते हैं, तो जब मुरली उनसे सुनते हैं, तो तो मुरली के शब्द हमें याद रहे या नहीं रहे, लेकिन उस समय का जो पावरफुल वातावरण होता है, उस समय की जो पावरफुल वाइब्रेशंस होती हैं, वो हम सबको टच करती हैं, दिल को छूती हैं। तो वो जो प्यार से बाबा ने हमें पालना दी और उस पालना के आधार पे हम निर्णय ले सके, क्योंकि जब कभी भी कोई फैसला लेना होता है तो अगर कोई सपोर्ट मिलती है, कोई मार्गदर्शन मिलता है, तो हम वो फैसला ले सकते हैं। फैसला कभी कभी हम जीवन का जो भी फैसला लेते हैं, उस फैसले के पीछे में सबसे पहले तो हमें सुनना पड़ता है। लिसनिंग एक बहुत बड़ी अवेलेबल बात है। कभी कभी हम बिना किसी बात को सुने ही उसके प्रति धारणा बना लेते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपना इम्प्रेशन बना लेते हैं, कंप्लीट बात भी नहीं सुनते। तो जैसे सुनने की क्षमता को बढ़ाने की जरूरत है। कोई भी हमारे पास आता है, वो अपनी मुश्किलें लेकर आता है, कठिनाइयां लेकर आता है, क्योंकि उनको लगता है कि अगर जीवन में, इस संसार में, इस समय अगर कोई सहारा है तो हमें यहां से मिल सकता है। बाबा कहते फिर उस समय अगर हम भी उनको डिसअपॉइंट करेंगे तो वो कहां जाएंगे। हट्टी तो एक ही है, एक ही घर है जहां से लोगों को कुछ सहारा मिल सकता है, जहां निस्वार्थ भाव से सेवा होती है। जब कोई स्वार्थ होता है या कोई मोटिव होता है तो डिसीजन भी टेंटेड हो जाता है, हमारा निर्णय भी उससे प्रभावित हो जाता है। तो बुद्धि को कुछ प्रभावित नहीं करे, हम डिसीजन इफेक्टिव ले सके और इफेक्टिव नहीं टाइमली भी ले सके। जो निर्णय समय पर नहीं लिया जाता तो उससे क्या होता है, कभी कभी उसमें फिर रिपेंटेंस आ जाती है, समय पे अगर हम डिसीजन नहीं ले पाते। तो टाइमली डिसीजन लेना, कंसिडर्ड डिसीजन लेना, हर बात को सोचकर निर्णय लेना और हर बात को समझकर। बाबा जो हमें बात समझाते हैं, केवल एक ही बात समझाते हैं कि ये हमारा अंतिम जन्म है और ये समय भी अंतिम चल रहा है। इस समय हमारे समय का कितना महत्व है और हमें प्रभावित क्या करता है। बाहर का वातावरण भी प्रभावित नहीं करता हमें, बाहर की परिस्थितियां भी हमें हलचल में नहीं लेके आती, लेकिन बाबा कभी कभी कहते हैं व्यर्थ संकल्प हमें प्रभावित करते हैं, जो चीजें हमारे काम की नहीं है। तो उनसे भी हम अपने आप को कैसे अलग रख सकते हैं, जब हम अपने समय के महत्व को जानते हैं, जब ये मानते हैं कि टाइमली डिसीजन लेना है। अगर हम सोचने में चले गए, अगर हम हर बात के बारे में पूछते ही रहे, तो वो टाइमली डिसीजन नहीं होगा। हम ईश्वर को तो कहते हैं ना, वो असोचता है, अकर्ता है, अभोक्ता है। तो क्या हम भी असोचता बन सकते हैं? जब हमने बाबा को जीवन दे दिया, हमारा जीवन श्रीमत के आधार पर चल रहा है, तो हमें सोचने की जरूरत होनी चाहिए क्या? हमारी फाउंडेशन तो लाइफ तो श्रीमत है ना, और वो क्लियर है हमारे सामने, हर ब्राह्मण आत्मा के सामने उसको पता है कि उसके लिए राइट क्या है। वैसे तो हम बाबा कभी कभी हंस की एग्जाम्पल देते हैं कि हंस क्या होता है, मोती और कंकर को परख सकता है। तो परखने के लिए भी क्या चाहिए? अनवेवर्ड माइंड चाहिए। अभी जैसे देखिए, एक कोई ट्रस्टी होता है किसी संस्था का, तो ट्रस्टी का अर्थ क्या होता है, जिसमें लोगों ने ट्रस्ट बैठाया है, विश्वास रखा है। बाबा ने हम पर भी तो विश्वास रखा है, बाबा ने हमें जिम्मेवारी दी है। अगर हम ब्राह्मण बने हैं, ब्रह्मा कुमार कहलाते हैं, ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं, तो उसके साथ हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो आ जाती है, जिम्मेवारी आ जाती है। तो लोग आज, हम अगर नहीं समझते तो लोग हमें याद दिलाते हैं। यहाँ तो आबू में आसपास लोग सब ये कहते हैं ये ओम शांति वाले हैं। तो मतलब क्या हुआ कि इनका स्वधर्म शांति है, तो हम अशांत हो सकते हैं क्या? अगर अशांत होंगे तो फिर निर्णय कैसे लेंगे? फिर तो प्रवोक हो जाएंगे, फिर तो उकसाए जाएंगे, फिर वो फैसला नहीं होगा, फिर वो तो रिएक्शन होगा। आजकल क्या होता है, लोग रिएक्ट ही करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। किसी ने कुछ कहा तुरंत रिएक्ट करते हैं कि आपके ऐसा कहने की हिम्मत कैसे हुई। आज जिसे बाबा ने अशुद्ध अहंकार कहा, हमें ये तो स्वमान है कि हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं, हम ईश्वरीय संतान हैं, हम आधार मूर्त हैं, ये स्वमान है। लेकिन अगर हमें अहंकार आ जाए अपनी जो अभी प्राप्ति हुई है, या यूं कहें अपनी जो पोजीशन मिली है, अपनी जो यूं कहें हमारा जो लोगों के प्रति लोग हमें जो समझते हैं, तो वो क्या होगा, उससे हम वेवर कर जाएंगे। तो हमें केवल ये हमेशा सोचना है, बाबा जैसे कहते हैं कि आप पूर्वज आत्माएं हो। तो पूर्वज आत्माएं क्या हो करते हैं, जब कोई भी कोई क्राइसिस होती है तो लोग कहां जाते हैं, अपने बुजुर्गों के पास जाते हैं कि उनसे राइट एडवाइस लें। मुझे याद है मेरे लौकिक पिताजी अपने घर में बड़े थे, गांव में जब भी कोई झगड़ा होता तो उनको बुलाते थे, क्योंकि जब किसी को आर्बिट्रेशन के लिए डिसीजन के लिए बुलाते हैं तो किसको चुनते हैं, उस व्यक्ति को चुनते हैं जो अनबायस्ड होगा, जो न्यूट्रल होगा, जो सबके प्रति समभाव रखेगा, जो खुद किसी प्रभाव में नहीं आएगा। तो प्रभाव में जब हम किसी प्रभाव में आ जाते हैं तो क्या होता है, हम कोई निर्णय ठीक ले पाएंगे। तो हमें अपने मन को भी एक्सरसाइज करवाने की जरूरत है, पूरी इंफॉर्मेशन चाहिए हमें, उस इंफॉर्मेशन के आधार पर हम अपनी विजडम को रिकॉल कर पाए, फोकस्ड माइंड से डिसीजन ले सके, एकाग्रता भी हो, अंतर्मुखता भी हो। योगी के लिए क्या कहते हैं, हमारे लिए महत्व योग का नहीं होकर योग युक्त जीवन का अधिक महत्व है। तो योग युक्त होकर हम जो डिसीजन लेंगे वो राइट डिसीजन होगा। क्योंकि लोग कहते हैं ना योग के लिए क्या समझते हैं, योगी जीवन किसी को कहो, अभी तो लोग ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय को जानने लग गए हैं। पहले हम किसी को कहते थे चलिए आपको मेडिटेशन सिखाएं, तो उनका यही होता था कि मेडिटेशन तो बुजुर्गों के लिए है, बूढ़ों के लिए है, उसके लिए तो हमें जाके पहाड़ पे जाना पड़ेगा या नदी किनारे जाकर बैठना पड़ेगा। लेकिन अभी हम समझते हैं कि योगी जीवन है ये हमारा, योगी जीवन नहीं जीवन स्टाइल ही हमारा ऐसा हो जाता है जिसे हम अलौकिक जीवन कहते हैं। हम लोग क्या समझते हैं, जब बाबा हम आते हैं तो सबसे पहले हमें बाबा क्या समझाते हैं कि पुरानी दुनिया से आप मर गए, पुराने संबंध, ये पुरानी देह, ये पुराने रस्म रिवाज, ये सब भूलने हैं आपको। मरने का मतलब क्या होता है, ये हमारा मर जीवा जन्म है। मरने का अर्थ क्या है, जैसे जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसको पास्ट की विस्मृति हो जाती है, तो ऐसे हमें भी अपने पास्ट के संस्कार, पास्ट की कस्टम्स, उनसे विस्मृति हो जाती है। हमें गाइड क्या करता है, बाबा ये तो कहता है कि अंत तक संबंध निभाने तो हैं, लेकिन उसके लिए भी वो श्रीमत देता है कि कैसे संबंध निभाने। हम अपनी धारणाओं को, हम अपने जो नियम है उनको तो कभी नहीं त्यागते कहीं भी जाएं। तो संबंध निभाने जरूर है, लेकिन जैसे बाबा कहते हुए देखते हुए भी नहीं देखें, सुनते हुए भी नहीं सुने, यानी हमें कुछ प्रभावित नहीं करे बाहर की बातें, क्योंकि बाहर ग्लैमर तो बहुत है, बाहर आकर्षण तो बहुत है, लेकिन उन सब आकर्षणों से पार होने के लिए, उस ग्लैमर से पार होने के लिए हमें क्या करना है? अपनी तैयारी तो खुद करनी है, साइलेंस का भी अभ्यास करना है। साइलेंस केवल मुख का साइलेंस नहीं, लेकिन व्यर्थ संकल्पों की भी साइलेंस, एकांत में भी रहने का अभ्यास करना है। एकांत का कितना महत्व है, किसी भी धर्म गुरु को देख लें, किसी भी महात्मा को देख लें, सब लोग एकांत के महत्व को जानते हैं। एकांत का अर्थ ही ये है कि वो समय जो हम परमात्मा के साथ गुजारते हैं, एक के साथ गुजारते हैं, हम अकेले हैं। अभी आजकल तो लोगों को अकेले रहने से डर लगता है, तो वो म्यूजिक जोर से चला देते, शोर तो उनको चाहिए, लेकिन साइलेंस के भी हम अभ्यासी बने। तो जब साइलेंस के अभ्यासी बनते हैं तो जो है वो हम लोगों को फिर निर्णय लेना आसान होता है, हमारी निर्णय शक्ति अपने आप शक्तिशाली बनती है। जैसे जब लोग थोड़ा बोलते हैं तो उनके बोल को हम महत्व देते हैं, जब कोई व्यक्ति ज्यादा ही बोलता है तो हम सोचते हैं कि ये तो बोलता ही रहता है। तो हमें ये सोचना है कि हमें जो भी संकल्प भी करना है, जो भी वचन भी बोलना है और जो भी कर्म भी करना है, उसके जज तो हमें स्वयं बनना है ना। इंटेलेक्ट का कार्य क्या है, बुद्धि का कार्य क्या है? बुद्धि का कार्य एक फिल्टर की तरह है, स्क्रीन करने के लिए है। और फिल्टर को क्या करना है, हमें नेगेटिविटी को फिल्टर करना है। पहले तो बाबा ये कहते थे, अच्छा कोई संकल्प आ गया लेकिन उसको कर्म में नहीं लेके आओ, लेकिन अभी तो बाबा ये कहते हैं कि अभी वो स्टेज है जब आपको संकल्प क्या स्वप्न में भी नेगेटिविटी नहीं आनी चाहिए, अभ्यास उसका चाहिए। उसके लिए हमें जैसे बहुत सी बाबा ने युक्तियां बताई हुई हैं, जैसे हमारा ये ट्रैफिक कंट्रोल है, पहले 5 बार होता था, अभी हर एवरी आवर होता है, हर घंटे में होता है। उस समय हम अपनी चेकिंग कर सकते हैं कि हम अपनी बुद्धि को कितनी फास्ट एकाग्र कर सकते हैं, क्योंकि कोई ना कोई तो कारोबार में हम फंसे हुए होते हैं, चाहे अपनी शॉप पे होते हैं या ऑफिस में होते हैं या घर में होते हैं, लेकिन तुरंत उसको अलग करके अपने आप को फोकस्ड करना, उसमें कितना समय लगता है। कभी कभी तो शायद हम इतने व्यस्त होते हैं कि ट्रैफिक कंट्रोल गुजर जाता है तब बाद में हमें पता लगता है। तो भाव ये कि ये युक्तियां हमें बाबा ने दी हैं, इन युक्तियों के आधार से हम अपने आप को बीच बीच में अलर्ट करते रहते हैं, सावधान करते रहते हैं, ध्यान से चलते हैं। तो ध्यान जो हम कहते हैं, मेडिटेशन को भी ध्यान कहते हैं, कि जो भी संकल्प हम करें वो अनायास नहीं हो, ऐसे ही नहीं आ जाए, लेकिन ध्यान से सोचा हुआ हो, शब्द भी जो भी बोले वो भी ध्यान से सोचा हुआ शब्द हो, ध्यान से किया हुआ कर्म हो। तो योगी जीवन का अर्थ ही है कि जो भी हम कर्म है उसको हम सोच कर करते हैं, उसको हमारी अपनी कॉन्शियस विल से करते हैं, ये नहीं कि वो अनायास ही हो जाता है। तो हम जो भी करते हैं हम उसकी आउटकम को भी, उसके परिणाम क्या होने वाले हैं, उनको भी सोच के ही डिसीजन लेते हैं। बाबा हमेशा हमें ये कहते हैं कि जो विजुलाइज करें कि मैं जो कर्म करने जा रहा हूं, उस कर्म का प्रभाव अनेक आत्माओं पर पड़ने वाला है, जैसा कर्म मैं करूंगा सब फॉलो करेंगे, तो मेरा जो कर्म है वो सर्व के कल्याण के लिए होना चाहिए। उसके लिए ये आवश्यक है कि हम अपने आत्मविश्वास को भी बनाए रखें, और जब हम ये समझते हैं कि बाबा हमारे साथ है तो हम निश्चिंत भी हो जाते हैं कि जो भी परिणाम होगा, जो भी रिजल्ट होगा वो अच्छा होगा। निर्भयता भी आ जाती है हमारे जीवन में। तो भगवान को अपना साथी बनाकर चलना और कंबाइंड रूप में काम करना, उसमें बहुत हिम्मत रहती है, उमंग उत्साह रहता है। और जब उमंग उत्साह रहता है तो हम डट के कार्य करते हैं। जब हम लो फील करते हैं तो हाफ हार्टेड अप्रोच रहती है कोई भी काम करने में। जब उमंग उत्साह से कोई कार्य करते हैं, जब भगवान को अपना साथी बनाकर कार्य करते हैं, तो उसमें फिर हम हटते नहीं है, निर्भयता रहती है। तो बाबा ने जो हमें सिखाया है, भले ही आउटकम क्या भी हो, कुछ लोग हमें क्रिटिसाइज भी करेंगे, कुछ हमारी महिमा भी करेंगे, कुछ निंदा भी करेंगे, लेकिन योगी की क्वालिटी क्या कहते हैं, निंदा स्तुति मान अपमान लाभ हानि में एक रस स्थिति। तो सभी इवेंचुअलिटीज के लिए हमें तैयार तो रहना पड़ेगा। हम ये नहीं तब कह सकते कि ये तो मेरा डिसीजन नहीं था, ये तो मैंने उनके कहने पे किया था। तो हम रिस्पॉन्सिबिलिटी को शिफ्ट कर रहे हैं। लेकिन जब हम आधार मुहूर्त है तो हम अपने डिसीजन को ओन भी करते हैं कि ये मैंने किया, श्रीमत के अनुसार किया, बड़ों से राय करके किया, तो फिर मुझे किस बात की फिक्र है। तो हम बेफिक्र रहते हैं। इसलिए जो भी हम कर्म ज्ञान के आधार पे करते हैं, श्रीमत के आधार पे करते हैं, वो हमें सुख देता है। आज बाबा ने कहा ना, श्रीमत के आधार पे आपको स्वर्ग के अथाह सुख मिलते हैं। क्योंकि कर्म किस आधार पे किया, उसकी उसकी फाउंडेशन क्या थी, उसमें सबका हित समाया हुआ था। तो जब भी हम अपनी बुद्धि को शार्पन करना चाहते हैं, तो जैसे बाबा कहते हैं कि हमें अपने पुरुषार्थ में नवीनता लानी चाहिए, हमेशा कुछ नया करना चाहिए, कुछ नई मेहनत करने की जरूरत है, कुछ नया सीखने की जरूरत है। दुनिया में भी ये कहते हैं कि अगर आपको यंग रहना है तो आप कुछ ना कुछ सीखते रहिए। हम तो बाबा कहते हैं हम गॉडली स्टूडेंट हैं, हमारी ये स्टूडेंट लाइफ है। तो जब हम सीखने की भावना रखते हैं तो हम सबको एक्सेप्ट भी करते हैं, स्वीकार भी करते हैं, सबकी विशेषता को भी देखते हैं, वो भी हमारे संगठन को भी शक्तिशाली बनाता है। तो हमारा जो भी डिसीजन हो, जो भी निर्णय हो, वो संगठन को शक्तिशाली बनाए, हमें एक मत बनाए, ना कि मत भेद में ले आए। तो डिवाइन इंटेलेक्ट जिसे हम कहते हैं, वो डिवाइन इंटेलेक्ट हमें इसी समय मिलता है, ईश्वरीय बुद्धि मिली है हमें, और उस बुद्धि के आधार पे हम जो भी संकल्प करते हैं या कर्म करते हैं, वो सबके हित के लिए अपने आप होगा। बाबा कहते हैं ना, सर्वोदय की बात करते हैं कभी कभी, कि सर्व के ऊपर दया कौन कर सकता है। तो हम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो भी कर्म है वो ईश्वरीय मत के आधार पर है। सब चीजों को हम देखकर करते हैं। तो उमंग उत्साह में रहना, सदा खुश रहना। एक बार हम सब लोग अव्यक्त बाबा से मिल रहे थे, तो बाबा ने तो यहां तक कहा कि अगर शरीर से प्राण भी निकल जाए तो भी खुशी नहीं जाए। तो खुशी का आधार क्या है? खुशी का आधार है जब हमें कर्मों से सफलता मिलती है, जब हम एम्पावर्ड महसूस करते हैं, जब हम शक्तिशाली होते हैं, तो वो हैप्पीनेस होती है। तो इसलिए अगर हम अपने जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें जरूर कुछ न कुछ नवीनता अपने जीवन में लाते रहना है। क्रिएटिव इंटेलेक्ट चाहिए। मैं देखता हूँ उस पार्क में जो हमारे भाई बहन हैं, वो कितना चिंतन करते हैं, अव्यक्त वाणियों से हर चीज की पॉइंट्स निकाली हुई। तो हम सब लोग भी अध्ययन भी कर सकते हैं। तो जितना समय हमारा सफल होगा, जितना समय हमारा क्रिएटिव होगा तो वो उतना हमें खुशी भी देगा और हमें शक्ति भी देगा। तो इसलिए निर्णय हमारा श्रीमत के आधार पर हो, लेकिन साथ साथ जो कहा बहनों ने पहले भी कहा, परमात्म प्यार के आधार पे भी हो। बाबा हमेशा माताओं की महिमा करते हैं, क्यों करते हैं कि शुरू में जो यज्ञ को संभाला, बाबा ने एक मुरली में ये भी कहा था कि जिस सेवा स्थान पे माताएं अधिक होती हैं वहां का भंडारा भी भरपूर और वहां की भंडारी भी भरपूर रहती है, भावना है। तो हमारी श्रेष्ठ भावना भी चाहिए, ज्ञान भी चाहिए, निश्चय भी चाहिए, आत्मविश्वास भी चाहिए। जब श्रेष्ठ भावना होती है, बाबा पे बलिहार जाने की वो जो संकल्प होता है, वो संकल्प भी आवश्यक है। उस संकल्प के आधार पे हम जो डिसीजन लेते हैं या बाबा पर कुर्बान जाते हैं, उससे जो हमें खुशी मिलती है, उससे जो हमें शक्ति मिलती है, वो हमें जीवन में आगे बढ़ाती है। तो हमारे कर्म ही हमारे को आगे बढ़ाते हैं। तो हमारे श्रेष्ठ कर्म और श्रेष्ठ कर्म का आधार है हमारे निर्णय। हमने जो डिसीजन लिया, छोटे छोटे डिसीजन कभी कभी बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। सेवा के लिए अपने आप को ऑफर करना, जब सेवा की अपॉर्चुनिटी आए तो हम कहें हम तो बिजी हैं, हमारे पास तो समय नहीं है, हमें तो इस कारोबार में जाना है। तो हर अपॉर्चुनिटी को अवेल करना। इसलिए जो भी बाबा हमें अपॉर्चुनिटी देता है, उस अपॉर्चुनिटी को हम अवेल करें, उसको स्वीकार करें, उस चैलेंज को। कभी कभी हम सोचते हैं ये सेवा तो हम कर नहीं पाएंगे, इसका तो हमें कुछ अनुभव नहीं है, लेकिन जब हमें ऑफर मिलती है, मैं रिकलेक्ट करता हूं, जब मैं चंडीगढ़ में था तो मैं तो पेशेंट्स ट्रीट करता था, लेकिन एक दिन मुझे अचानक कहा कि आपको मैनेजमेंट में आना है, तो मुझे वहां डिप्टी मेडिकल सुपरिटेंडेंट बना दिया। तो मैंने उनको कहा मुझे कुछ अनुभव नहीं है, मुझे कहा सबने हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन जब कार्य आता है तो आपको खुद ही करना पड़ता है। लेकिन अब मुझे रियलाइज होता है कि उसके कारण मुझे मधुबन से निमंत्रण मिला, वो अपॉर्चुनिटी स्वीकार की। तो जब यहां हॉस्पिटल मैनेज करना था तो तब वो 91 में, समय कैसे गुजरता है वो भी हमें पता नहीं लगता। चैलेंजेस तो हर स्थान पे आते हैं, लेकिन चैलेंजेस के साथ साथ अगर हमारी बुद्धि क्लियर है, हमारा आत्मविश्वास है, तो बाबा भी मदद करता है। बहुत चैलेंजेस आते हैं, कोई भी आप जब नया कार्य शुरू करते हैं, लेकिन हमारा निश्चय, हमारा क्लियर इंटेलेक्ट और हमारा बाबा के प्रति प्रेम, अटूट प्रेम, वो हमें आगे बढ़ाता है। तो इस ईश्वरीय जीवन में हमारी पढ़ाई, बाबा की पालना, परिवार का सपोर्ट, वो हमें कभी भी नहीं भूल सकता। तो उस परिवार के सपोर्ट के कारण ही आज हम यहां पहुंचे हैं, तो उसके लिए परिवार को भी धन्यवाद और आप सबको भी धन्यवाद। ओम शांति।
शुक्रिया आदरणीय भाई जी का, बहुत सरल शब्दों में बताया कि इस तरह से पुरुषार्थ में नवीनता लाते हुए अपनी बुद्धि को अगर हम ट्रेनिंग देते हैं और असोच बनते हैं, बाबा को साथ रखते हैं, तो ये शक्ति हमारी बहुत विकसित हो सकती है। तो दिल से फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया भाई जी का।